अब ये प्रश्न मैंने सोचा था आएगा ही, इसीलिए कहा भी नहीं, चैत्य पुरुष को कैसे जगाएं? बहुत सुंदर प्रश्न है, और ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चैत्य अग्नि है, अग्नि कैसे जागती है? जब आप अग्नि का स्पर्श करते हैं। वेदों में इसको कहा गया कि एक लकड़ी होती है अरणी, तो यज्ञ की अग्नि जगाने के लिए क्या करते थे, कहते थे अरणी को ले आओ, वो एक विशेष लकड़ी है, उसको एक हाथ से लकड़ी को पकड़ो, हाथ नीचे की ओर रहेगा और एक ऊपर की ओर रहेगा हाथ, और उसको रगड़ो। अब देखिए ऐसे बता रहे हैं टेक्निक, ये नहीं कह रहे ऐसे रगड़ो, ऐसे रगड़ो, ऐसे जब रगड़ोगे तो अग्नि उत्पन्न होगी। बहुत सुंदर भाषा है। तो नीचे कौन है? लकड़ी, वो जो हम हैं, और ऊपर कौन है? वो भगवान है। दोनों के परस्पर आकर्षण से, घर्षण से ये अग्नि उत्पन्न होती है। तो जितना अधिक हम श्री अरविंद की वाणी, माता जी की वाणी, ये एक संपर्क सूत्र है, बहुत सिंपल संपर्क सूत्र है, इसमें तो कुछ नहीं चाहिए, पुस्तकें हैं, हम रोज उनको पढ़ें, थोड़ी देर उस पर ध्यान करें, तो एक ना एक दिन ये शब्द नहीं है, इसका तो मेरा एक बड़ा जीवंत अनुभव है। अनुभव के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये आग है। और अगर हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक है लकड़ी अगर गीली है तो उसमें क्या उठेगा? धुआं, अगर आप उसमें आग देंगे, और लकड़ी अगर सूखी है तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होगी। गीली लकड़ी का मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई हैं, पूर्व धारणाओं की तरह। वो अगर हम इस तरह से जाएंगे कि हम ढूंढ रहे हैं कि इसमें वो बात कहाँ लिखी हुई है कि जगत सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, अरे श्री अरविंद की वाणी में हम इसको सुनेंगे तो लिखे ही नहीं है, वो तो कहते हैं जगत सत्यम न मिथ्या, ब्रह्म सत्यम न मिथ्या, तो समस्या हो जाएगी, पूरी लाइव डिवाइन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी पूर्व धारणाएं हैं। सूखी लकड़ी कौन सी होती है? जिसके अंदर जलने के लिए वो तैयार है, लकड़ी के अंदर ही आग है, लेकिन उसको बाहर लाने का काम। तो वो जो कास्ट है ये देह रूपी और मन रूपी, उसको संपर्क में लाना है श्री अरविंद, श्री माँ की वाणी के। दूसरा, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, ये वास्तव में यज्ञ होने चाहिए, परंतु कई बार इसमें भी, ये तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, मैं निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार से एक यज्ञ के रूप में चीज़ें हो रही हैं, इट्स वेरी नाइस। और इसी प्रकार से एक जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सच में इस यात्रा में पूरी तरह जुड़ें, अच्छे से जुड़ें, एक बार पांडिचेरी जाना चाहिए। आप कहेंगे पांडिचेरी कहाँ से आ गया? क्योंकि महाकुंड तो वहीं है, जल रहा है वो, समाधि के स्पर्श ने अच्छे अच्छों को दीवाना बना दिया, बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार उस अग्नि कुंड को स्पर्श करके आइए, और एक बार ही क्यों, बार बार जाइए, जितनी बार जाएं उतना अच्छा। और वो स्पर्श हमारे अंदर उस अग्नि को, श्री अरविंद के पत्र हैं इसमें, कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, वो कहते हैं कि मेरे दो प्रकार के शिष्य हैं, एक जो यहां रहते हैं, एक जो बाहर रहते हैं, और जो बाहर रहते हैं उनको वो ये एडवाइस देते थे कि वे लोग साल में एक बार या दो बार, कुछ बार वो आश्रम उनको आना चाहिए यहाँ पे, ताकि वो अपने आप को रिचार्ज करके जा सकें। ये श्री अरविंद के वर्ड्स हैं, आजकल हम लोग यूज़ करते हैं कि रिचार्ज करना बैटरी को, ये वास्तव में श्री अरविंद का पत्र है, तो अपनी बैटरी को रिचार्ज करना। और उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है अगर आपका मोटिव, क्योंकि कई बार लोग प्रतीक्षा करते हैं, अचानक कोई हमारी कॉन्फ्रेंस आ जाए तो हम चले जाएंगे, अरे क्या है भाई, अपना पैसा खर्च करके चले आओ, क्या है उसमें इतना कभी भगवान से मिलने के लिए चले आओ, कोई जरूरी थोड़ी है कि कुछ और दूसरा कारण हो। तो जब हम इस भाव से आते हैं कि वहाँ बैठ के जो हमारी प्यास है उसको जगाइए, और कुछ नहीं करना है वहाँ पर, थैंकफुली कोई पंडा नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है, कोई पैसे नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं, वहाँ समाधि पे बैठ के बस अपने यहाँ माथे को लगा दीजिए, देखिए आग कहाँ से लगेगी। तो दैट इज बहुत सिंपल, यानी आग के कॉन्टैक्ट में आना है, वो भी नहीं हो सकता है तो सीमा श्री अरविंद की चित्रों को देख करके हृदय के अंदर यही प्रार्थना उठे कि माँ मेरे अंदर अभीप्सा जागे, कैसे जागे, माँ मेरा चैत्य बाहर आए, क्योंकि चैत्य से ही अभीप्सा, दोनों जुड़ी हुई हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं। और चौथा, अब ये कहते हैं हम लोग कि अंदर जाना, अंदर जाना क्या है, अंदर जाना यानी वही हमारा सत्य है लेकिन आवरण में है। तो आवरण किसका है? मन प्राण और शरीर, यही आवरण है। इसको बड़े सुंदर ढंग से बताया है। मन अगर नाना प्रकार के डाउट्स में, मानसिक ऊहापोह में उलझा हुआ है तो चैत्य का ना प्रकटन होगा, ना दर्शन होगा, ना वो घटना घटित होगी। सोचने से भगवान नहीं मिलते हैं। ये आज सुबह भी वो उपनिषदों की पंक्तियां, बच्चे ईश उपनिषद और एक आध जगह उन्होंने कठोपनिषद भी लाए थे, कल भी ये बात हो रही थी कहीं कि ना यमात्मा न प्रवचनेन न मेधा न बहुना श्रुतेन यम वेशे वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। ये थोड़ा हमको इनको उसको शांत करना है, बहुत ज्यादा ये नाचते ही रहता है, इसको शांत करना है। शांत करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है जस्ट एक साक्षी भाव से जीवन को देखना। माँ इसको कहती है स्टेपिंग बैक। बहुत सारी चीजें जीवन में हर समय घटित होती हैं। वास्तव में अगर हम देखें पूरे दिन में कौन सी घटना है जो रियली आपके लिए लास्टिंग वैल्यू रखती थी। चैत्य की खोज का प्रारंभ वहीं से होता है। सावित्री में वर्णन है कि जब सावित्री बैठती हैं चैत्य की खोज में तो उसकी उनकी अवस्था बताई गई है। अवस्था ये, ओबीडियंट टू ए हाई इनर कमांड सी सैट, टाइम लाइफ एंड डेथ वेयर पासिंग इंसिडेंट्स। ये होता है ना जो भी खोजता है। जगनवल्क, आग लग गई, इस समय में इसमें बैठा हूं, ये अवस्था, ये आसन ये है। वो अपने उखड़ू करके बैठ गए, टेढ़े मेढ़े हो गए, आसन है अंदर में जो डोले ना। मैं बैठूंगा रोज और बैठूंगा, ढूंढूंगा, प्रश्न करूंगा, खोजूंगा, माँ कहाँ हो तुम माँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये सच्चाई से मन अपने आप शांत होगा। क्यों? क्योंकि उसको और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी सुंदर वो बात, माँ इसकी यही बात करती है एग्जैक्टली, उन्होंने शब्द यूज किया है थर्स्ट। माँ कहती कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम वो बाइकर हो, अमेरिकन एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ एन अमेरिकन यूथ, उन्होंने शब्द यूज किया है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्यास है। ये प्यास बड़ी बहुत बहुत अद्भुत है। और इसीलिए कई बार हम लोग इधर से भी सुन लो, कुछ उधर से भी सुन लो, ये समस्या क्या होती है उसमें आपको आधे उत्तर मिलते हैं और संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति। प्यास को नचर करना है। ये प्यास तभी बुझेगी, और जब ये प्यास धीरे धीरे बढ़ती है तो उसमें बाकी सारे मन के जो प्रश्न उत्तर सारे समाहित होने लगते हैं। तो नचर दिस थर्स्ट। और उसी में ये सारी चीजें आती हैं कि प्राण का आवेग संवेग। श्री अरविंद कहते हैं कि ट्रू सोल साइकिक बीइंग को पाने के पहले एक डिजायर सोल होती है जो हमें एक आभास देती कि यह मैं हूं। उससे बच के रहना है। बहुत सारी उसके अंदर वृत्तियां जगेंगी, कामनाएं जगेंगी, और यदि हम उसके अनुसार भागने लगेंगे तो कैसे स्थिरता आएगी, रेस्टलेस रहेगा जीवन। निष्काम कर्म, समता का अभ्यास, ये सब इसीलिए है ताकि हमारा प्राण शांत हो सके। निष्काम कर्म से प्राण शांत होता है। इवन साधना इसलिए नहीं की जाती है कि मुझे कुछ मिलेगा, वहां भी निष्काम भाव से, डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, डिवाइन फॉर द जॉय ऑफ द डिवाइन। तो जैसे जैसे ये बंदर शांत होता है कामना रूपी, वैसे वैसे वो अंदर का सूर्य उद्भासित होता है। शरीर भी समस्या पैदा करता है क्योंकि वो बहुत तमस से भरा हुआ है, उसका गुण ही तमस है, तमोगुणी प्रधान है। तो रोज उसको नियमित रूप से एक डिसिप्लिन देना, एक रूटीन देना, ये सब चीजें सहायक होती हैं ताकि आपका देह, उसके अंदर जो तमस है वो इतना प्रभावशाली ना हो जाए कि बस निद्रा के अधीन हो जाएं और हम कोई भी चेष्टा ना कर पाए। तो उसको रोज ये डिसिप्लिन, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी चीजों में एक कारण ये भी है कि शरीर के अंदर जो तमस का गढ़ है उसको हल्का किया जा सके। नहीं तो जैसे ही लोग बैठते हैं ध्यान के लिए तो उनको नींद आ जाती है। तो एक सफल वक्ता की पहचान यही होती है कि भोजन के बाद भी व्यक्ति या तो गहरी नींद में सो जाए या या नींद से जग जाए। तो ये शरीर को भी, और फिर श्रद्धा वो टॉर्च लाइट है जो हमको ले जाती है वहां तक। जब एक बार ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं तब जरूरत नहीं है। तो श्रद्धा को बहुत बचा के रखना है उन सारी चीजों से, उन सारे लोगों से, उन सारी बातों से जो अश्रद्धा से भरे हुए हैं। ये भगवत गीता भी बताती है, अश्रद्धावान जो हैं उनके साथ मेरे नाम मत लो, सत्संग का असर होता है, किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, ये सारी चीजें। एक दिन आता है जब हमारी अभिप्सा को, और कुछ नहीं तो अंदर में माँ 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 माँ, ये तो कर ही सकते हैं हम। ये योग कठिन नहीं है, बस एक निष्ठा होनी चाहिए। और एक दिन आता है जब ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगता है ये नहीं तो जीवन नहीं, बाकी सब मिल गया लेकिन ये नहीं मिला, तो उस प्यास वो एकदम कहते ना तैयार हो गया, अब लकड़ी पूरी तरह बस धधकने को तैयार है, उस क्षण ये घटना घटती है। तो ये सारे कुछ कुछ तरीके हैं। मिनिमम है माँ के नाम का स्मरण, निष्काम कर्म, समता का अभ्यास, श्रीमा श्री अरविंद की वाणी का श्रवण मनन, निधिध्यासन, ये सारे नोन हैं। उनकी फोटो में टकटकी लगा के देखना, उसमें भी आग है। श्री अरविंद आश्रम, रेलिक सेंटर, ये सब इसीलिए हैं ताकि हम लोग वहाँ जो अग्नि है उससे अपनी अग्नि प्रज्वलित हो जाए। ऐसे लोगों का संग जो इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और जिनके अंदर ये आग लगी हुई है, और ऐसे लोगों से दूरी, ये आवश्यक है, सबके अंदर भगवान है लेकिन ऐसे लोगों से दूरी जो इसमें धूल मिट्टी धुआं डालने का काम करते हैं। तो ये चैत्य को पाने के कुछ तरीके हैं।